हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आकांक्षा ने झलक के बारे में सोचते हुए कहा, मेरी प्यारी सौतेली बहन, तुमने इतनी जल्दी मरकर ठीक नहीं किया। काश तुम वापस आ जाती और मेरी इन खुशियों को देखती, कितना मजा आता ना। रियली बहन, आई मिस यू। ये कहते हुए आकांक्षा की मुस्कान बड़ी ही घटिया और साजिश से भरी हुई लग रही थी। जिसे झलक के बिना अपनी खुशियां अधूरी लग रही थी, वही अब झलक की आंखों में जलन देखना चाहती थी। फिलहाल उसने शहर की सबसे बड़ी वेडिंग ऑर्गेनाइजर से कॉन्टैक्ट किया और अपनी शादी की सारी जिम्मेदारी उसी को सौंपने का फैसला ले लिया था। वो अपने लिए हर एक चीज बेहतरीन रखना चाहती थी। पैसा पानी की तरह बहाने वाली थी आकांक्षा ओबेरॉय। आखिरकार उसकी माँ का काला पैसा भी तो अब आना शुरू हो चुका था। न जाने कितनी ही संस्थाओं ने अलग अलग तरीकों से उसे सम्मानित किया था, बल्कि कितने ही करोड़ों रुपए भी उसे दिए गए थे। उस वक्त पूरे परिवार के सितारे पूरी तरह से और बेहद खूबसूरती से चमक रहे थे, और कहीं ना कहीं आकांक्षा इस बात का सारा श्रेय अगर किसी को दे रही थी तो सिर्फ और सिर्फ झलक को दे रही थी। फिलहाल दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना बिना किसी इमोशन के अपने बड़े से अपार्टमेंट में खड़ा हुआ था। उसने ठान लिया था कि आकांक्षा से शादी के बाद भी वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने इसी अपार्टमेंट में ही बिताएगा। हालांकि आकांक्षा एक आकर्षक ट्रॉफी वाइफ के लिए एकदम परफेक्ट थी और वो उससे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और सबसे बड़ी खास वजह थी शादी करने के पीछे उसका चेहरा, जो कहीं ना कहीं झलक से मिलता जुलता था, जैसे वो अब भी उससे बेहद प्यार करता हो। लेकिन अपनी दौलत और घमंड के चक्कर में उसने खुद ही झलक को अपने हाथों से जाने दिया था, बल्कि अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया था। अगर सिद्धार्थ खुराना चाहता तो झलक पर उंगली उठाना तो दूर की बात, उसके बारे में कोई उल्टा सीधा बोल भी नहीं सकता था। लेकिन आज उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं झलक के बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसने रोहित को भेजा भी था, ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन अनामिका ने इतनी सफाई से सारा काम करवाया था कि झलक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और सब लोगों को यही बताया गया कि झलक की मौत के बाद अस्पताल वालों ने ही उस पर तरस खाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ खुराना ने अपने कुछ आदमियों को झलक के गांव में भी भेजा था, लेकिन गांव में भी उनका कहीं से कहीं तक कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि गांव में यही बात फैला दी गई थी कि कर्ज से तंग आकर वे लोग गांव छोड़कर चले गए थे और उनकी ज्यादातर जमीनें जमींदार साहब ने खरीद ली थीं। अब सिद्धार्थ ने यह ठान लिया था कि झलक नाम का चैप्टर उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह क्लोज करना होगा। उसका उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ अब आकांक्षा के बारे में ही सोचना चाहिए। इस सोच के साथ उसने गहरी सांस ली और अपने अपार्टमेंट में जाकर गहरी नींद में सो गया। उधर झलक की आंखों में दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी। आज जो कुछ भी उसके ऑफिस में हुआ था, वो सब उसके जहन में बार बार घूम रहा था। लगातार उसका गुस्सा अपने आप ही बढ़ता जा रहा था। ऊपर से आदित्य राहा का उससे ये कहना कि उसे उसके बारे में सोचना चाहिए, उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिलहाल उसी वक्त रात के समय दादाजी किसी और के सामने मौजूद थे, और वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य राणा ही था। अचानक इतनी रात को अपने घर पर दादाजी को देखकर आदित्य हैरान रह गया। उसे लगा कि जो कुछ भी ऑफिस में हुआ था, शायद उसी के लिए उससे बात करने आए होंगे। मेरी पोती के व्यवहार की वजह से तुम्हें काफी हद तक अजीब भी लग रहा होगा, बुरा भी लग रहा होगा। देखो, मैं जानता हूं कि तुम उसकी बातों को उसका एटीट्यूड समझ रहे हो, दादाजी ने कहा। तभी आदित्य गुस्से में बोला, देखिए सर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप यहां अपनी घमंडी और नकचढ़ी पोती की तरफ से माफी मांगने आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि आपने उसे इतनी ज्यादा छूट क्यों दे रखी है। जिस इंसान के पास हद से ज्यादा पैसा हो जाता है, वो इसी तरह बिगड़ जाता है, जिद्दी, गुस्सेल और अकड़ू। आदित्य की ये बात सुनकर अचानक दादाजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, देखो, पूरा सच तो अपनी पोती का मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैं यहाँ तुम्हें एक जरूरी काम देने आया हूँ और तुम्हें वो काम करना ही होगा, वरना मुझे तुम्हारे और अपने बीच में तुम्हारे पिता को लाना होगा और तुम्हारे दादा को भी, और तुम्हारे दादा जो कहेंगे वो तुम्हें हर हाल में मानना ही होगा। ये सुनकर आदित्य हैरानी में डूब गया और बोला, सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपकी कंपनी के साथ मैंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं आपको अपना रोल मॉडल मानता हूँ, लेकिन आप इस तरह की बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? आखिर आप मुझे किस बात के लिए ब्लैकमेल करना चाहते हैं? दादाजी, जो कुछ ज्यादा ही दूर की सोच चुके थे, सीधा आदित्य की आंखों में आंखें डालकर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पोती की परछाई बनकर उसके साथ रहो।
ये सुनकर आदित्य की आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गईं। वो बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी पोती की परछाई, आखिर आप मुझे समझ क्या रहे हैं? शायद आप भूल रहे हैं सर, मेरा नाम आदित्य राणा है। अगर मल्होत्रा परिवार का नाम बड़ा है तो राणा परिवार का नाम भी कुछ कम नहीं है। तो आप इस तरीके से मुझे अपनी पोती के लिए बॉडीगार्ड हायर करना चाहते हैं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आदित्य की बातें सुनकर दादाजी कुछ पल तक शांत रहे। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने भीतर पूरी हिम्मत जुटा रहे हों। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, देखो, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हें हमारी बातें अजीब लग रही होंगी। हमारी बेटी को किसी तरह के बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही सब पर बहुत भारी है। लेकिन इस वक्त वो जिन लोगों का सामना करने वाली है, वे लोग बेहद खतरनाक हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी की परछाई बनकर उसके साथ रहें। अगर आप सीधे तरीके से उसके आसपास रहेंगे तो वो आपको अपने आसपास बिल्कुल भी भटकने नहीं देगी। हम यहां तुमसे बेटा रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि तुम इस तरीके से उसके साथ रहो कि उसे बिल्कुल भी एहसास ना हो, और जब भी उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम उसके साथ खड़े रहो। ये सारी की सारी बातें आदित्य के दिमाग के बिल्कुल ऊपर से होकर जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या समझे। वो हैरान था कि आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन अपनी पोती का बॉडीगार्ड बनाना चाहता है, वो भी डायरेक्टली नहीं बल्कि इस तरह की उसे खुद भी पता ना चले। आखिर चल क्या रहा था? इस वक्त आदित्य ने गहरी सोच के साथ कहा, मैं नहीं जानता कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर समझ चुका हूँ कि अगर आप यहाँ मेरे पास सीधे तरीके से अपनी पोती के लिए रिक्वेस्ट करने आए हैं तो मामला काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर आप चाहते तो इस दुनिया के बेस्ट से बेस्ट गार्ड्स उसके लिए प्रोवाइड कर सकते थे। आखिर ऐसा कौन सा खतरा है जो आपकी पोती के सिर पर मंडरा रहा है? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनकर दादाजी ने शांत मुस्कान के साथ आदित्य को देखा और कहा, इसके बारे में बेटा हम तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, बस इतना समझ लो कि सब कुछ तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। और ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट की डील है, उसी के बहाने तुम उसके आसपास रह सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उसे कभी भी जरा सा भी एहसास ना होने पाए कि तुम असल में उसकी सुरक्षा के लिए वहां हो, क्योंकि हम उसे खोने का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, वो हमारी जान है। और हाँ बेटा, तुम्हें हमारा ये काम हर हाल में करना ही होगा, और इसका जवाब भी हमें कल तक चाहिए। तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो मजबूरन हमें तुम्हारे दादाजी से बात करनी होगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा कोई भी कहा गया काम वो कभी मना नहीं करेंगे। आखिरी लंगोटिया यार जो है मेरे।
ये बोलकर दादाजी मुस्कुराए और वहां से चले गए। अब आदित्य सच में उलझन में पड़ गया था कि आखिर दिग्विजय सिंह जी कहना क्या चाहते थे। क्या वो उसे धमकी देकर गए थे, या प्यार से समझा रहे थे, या फिर उसे काम निकलवा रहे थे, और वो भी अपनी उसी लड़की बेटी के लिए जो एक नंबर की बदतमीज, घमंडी और अकड़ू है, जिसे अपने और अपने दादा के पैसों का इतना घमंड है कि वो किसी इंसान को भी इंसान नहीं समझती। आदित्य का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके दादाजी दिग्विजय सिंह जी को वो क्या मानते हैं, और उसके पास उनकी बात मानने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिलहाल दूसरी ओर दादाजी देर रात घर लौट आए थे। जैसे ही वो अपने कमरे में गए, आरव उनके सामने मौजूद था। उन्हें सामने देखकर दादाजी थोड़ा सा चौंक गए, लेकिन आरव ने आगे बढ़कर उन्होंने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा इंतजाम जरूर करके आए होंगे जिससे मेरी झलक और अनामिका पर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। पिताजी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे दोनों मेरी जान है, मेरी सांस है। मैं उनके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। भले ही आपने उन्हें कितना ही मजबूत क्यों न बनाया हो, दिमागी या शारीरिक रूप से झलक और अनामिका दोनों ही काफी मजबूत हैं, और झलक तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हैं पिताजी, बहुत ज्यादा ताकतवर। वो कब किसी इमोशनल गेम में उसे फंसा ले किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उसका इंतजाम भी हमने कर दिया है। झलक को कोई भी छू तक नहीं पाएगा, वो हमारी पोती है और हमें अच्छी तरह पता है कि हमें किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है। ये कहकर दादाजी ने आरव को अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया और खुद गहरी सोच में डूब गए, क्योंकि वो भी इस बात को लेकर परेशान थे कि न जाने झलक क्या करेगी जब उसका सामना सिद्धार्थ खुराना से होगा। फिलहाल अगली सुबह इन सारी बातों के पीछे खूबसूरत और हसीन सुबह हो चुकी थी। अनामिका फटाफट तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। झलक एक बार फिर अपने ब्लैक आउटफिट में वहां आई। ऐसा लग रहा था मानो झलक ने अपनी जिंदगी में रंगीन कपड़ों को पूरी तरह टाटा बाय बाय कह दिया हो और काले रंग को ही अपना लिया हो। काले रंग का कोट, ब्लेजर और फुटवेयर तक सब कुछ उसने ब्लैक ही चुन लिया था। पूरी तरह से वो अब सिर्फ काले कपड़े ही पहनने लगी थी। एक बार फिर झलक पावरफुल ऑरा के साथ वहां मौजूद थी और सबके साथ उसने ब्रेकफास्ट किया। तभी दादाजी हल्की सी मुस्कान के साथ झलक से बोले, अरे झलक बेटा, देखो आदित्य से फोन पर बात हुई है, वो आज फिर ऑफिस आएगा,
प्लीज तुम्हारा जो उसके साथ ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। और हाँ, वो मेरे दोस्त का बेटा है बेटा, प्लीज तुम्हें उसके साथ थोड़ा कोऑपरेट करना ही होगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? ये सुनकर झलक ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना वेजिटेबल सूप पीने लगी। सूप खत्म करने के बाद उसने अनामिका की तरफ देखा और कहा, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, तुम साथ चल रही हो? इस पर अनामिका थोड़ा नखरे दिखाते हुए बोली, नहीं, मुझे आज शॉपिंग पर जाना है। उस दिन मेरी शॉपिंग थोड़ी अधूरी रह गई थी और आज मुझे ज्वेलरी वगैरह लेनी है। तुम ऑफिस चली जाओ, वैसे भी ऑफिस जाना बहुत बोरिंग है। ये सुनकर दादाजी ने अनामिका को देखा और कहा, अरे बेटा चली जाओ झलक के साथ ऑफिस, तुम्हें भी तो उसकी यूके वाली ब्रांच संभालनी है, इस तरह तुम सीख भी जाओगी। ये सुनकर अनामिका ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, जब तुम्हें ठीक लगे तैयार हो जाओ। तभी स्नेहा झलक के पास आई और बोली, अच्छा अच्छा बेटा, तुम एक काम करना, जाते वक्त मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना, ठीक है? उसके बाद सीधे ऑफिस जाना, मंदिर तो वैसे भी तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा। ये सुनकर झलक ने उन्हें बस घूर कर देखा।